ओम शांति। भारतवर्ष महान देश है, इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर अनंत काल से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है। प्राकृतिक सुषमा का पर्याय आगू ऋषियों मुनियों की तपस्थली है। वर्तमान समय विश्व भर में आध्यात्मिकता द्वारा जीवन मूल्यों को उजागर करने वाला एकमात्र संस्थान ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी इसी आबू पर्वत पर अवस्थित है, जिसके द्वारा अनेक आध्यात्मिक अनुसंधान हुए हैं। मुख्यालय द्वारा निर्मित इस अकादमी के महत्वपूर्ण कक्ष स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। यूं तो आपने अब तक अनेकों कलाकारों एवं अनेकों कलाकृतियों का अवलोकन किया होगा, किंतु इस आर्ट गैलरी के चित्र एवं मॉडल्स ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित हैं, जिन्हें कलाकारों ने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा देखकर बनाया है। यह चित्रकारिता का उच्चतम आदर्श ही नहीं अपितु आध्यात्मिक अनुभूतियों को सजीव करने का प्रयास है। सर्वप्रथम प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमारी निगाहें सामने लिखी शीर्ष बिंदु मानवता का अनुभूत स्वप्न पर पड़ती हैं। समीप की एक दीवार पर एक प्रकाशित चित्र में दर्शाया गया है मोतियों से युक्त एक सुंदर सा सीप। मोतियों से भरा यह सीप निश्चित ही सागर के भीतर है, तदपि प्रकाश मोतियों को स्पर्श कर रहा है। ये मोती जीवंत है, मानवीय मूल्यों के प्रतीक है। इन सुंदर मोतियों को पुनः प्राप्त करना ही मानव मन की अभिलाषा है। यहाँ हम टेलीविजन के माध्यम से इस विद्यालय के विषय में विविध जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारी यात्रा आरंभ होती है एक श्रव्य दृश्य अनुभूति के साथ।
आपका इस कक्ष में स्वागत है। अब आप दुनिया की धूल अपनी आंखों से हटाकर एक बच्चे जैसे स्पष्ट दृष्टि से देखिए। आप इस ज्ञान को उस लक्ष्य से देखिए कि यह मानवता जितना ही पुराना ज्ञान है, यह आपकी अपनी ही कहानी है। जीवन में कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जिसमें बीती बातों की धुंधली सी यादें मन में आ जाती हैं। नदी की तरह अतीत की ओर बहने लगती है। कभी कभी ये धरती तले भी बहती है और उनका अस्पष्ट आवाज यदा कदा सुनाई देता है। कभी कभी ये यादें धीरे से पक्षियों और प्रकृति में भी हिंसा नहीं थी। सब कुछ पूर्ण था, विराग था। यह सच्ची संस्कृति का काल था। यहाँ बड़े शहरों की संस्कृति नहीं थी और न ही गगनचुंबी इमारतों की शक्ति थी। उस समय विज्ञान मानव और प्रकृति के साथ स्वाभाविक तौर पर कार्य करता था, जिससे जीवन समरसता और सहजता से बीतती थी। ये सब उपलब्धियां कुछ लोगों को ही नहीं थी, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में विद्यमान थी। जीवन जीना इतना सुखदायी था कि खुशी जीवन के हर पहलू में अनुभव होती थी। हर युग में मनुष्य ही धरती पर खुशहाली और जीवन अनुभव करते थे। दो मनुष्य एक जैसे कभी नहीं होते। आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे भिन्न है, आपके विचार और भावनाएं अलग हैं और वे केवल आपके ही हैं। लेकिन अनेक प्रकार का अंतर होते हुए भी हर एक के हृदय की गहराई एक जैसी है। सुख और शांति की इच्छा, निर्भयता से जीवन विचरण करना, प्रेम देने और लेने की आकांक्षा, ये सब हरेक की आवश्यकता है। जैसे अन्न व जल सबको आवश्यक है, वैसे इन गुणों के बिना भी जीवन जीवन नहीं है। जहाँ तक इतिहास की जानकारी है, मनुष्य पूजा पाठ तीर्थ यात्रा करता ही आया है। मनुष्य के अंदर सदा एक खोज रही है, जिसके आधार से नए नए आविष्कार हुए हैं। परमाणु के भी विभाजन का ज्ञान आ गया है और चांद तक भी मनुष्य पहुंच गया है। हमने विज्ञान को जीवन के हर पहलू में समाविष्ट किया है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है उससे न दुनिया में शांति आई है और न ही मनुष्यों के जीवन में खुशहाली और संतोष। मानवता को वो कुछ भी नहीं मिला है जो उस स्वर्ग की दुनिया में हर एक के पास था। चाहे हम जो भी हैं और जहाँ भी हैं, वहाँ हमारे जीवन में दुख ने ही स्थान लिया है। अगर हम खुश भी हैं तो भी वह खुशी उतनी क्षणभंगुर है जितना कि जीव पर स्वाद। स्वाद का सुख लेने से पहले ही वह समाप्त हो जाता है। अतीत में जाने से पता चलता है कि सभी धर्मों ने जो भी संदेश दिए उनमें एक संदेश समान था और वह था, आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। लेकिन अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं के बावजूद भी या मनुष्य के मस्तिष्क की गहराई को जानने की कोशिश करने के बाद भी सत्यता तो यही है कि आज विश्व में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं रहा। प्रकृति में भी दया नहीं रही। चारों ओर हिंसा के कारण निर्धनता और अकेलेपन के कारण दुख परछाई की तरह दुनिया में छाया हुआ है। विश्व का परिवर्तन करना असंभव कार्य लग रहा है। हर चीज अव्यवस्थित हो गई है। चारों ओर उलझन है और कोई भी बात का स्पष्ट चित्र किसी को भी नहीं। हर एक अपनी अपनी समस्या सुलझाने में लगा हुआ है। अगर वह समस्या सुलझाना जानता भी हो तो भी हर बात को कैसे जोड़ा जाए यह वह नहीं जानता। कुछ हिस्से खाली रह ही जाते हैं। अगर मानव अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना जान जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन के लिए शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ दिए गए उत्तर आपको अति प्राचीन मानवीय ज्ञान की गहराई तक पहुँचाएंगे। मानवता इस समय अपने अति महत्वपूर्ण समय से गुजर रही है। वर्तमान समय जो भी घटनाएं घटेगी वो भविष्य का आधार बन जाएगी। यह वह खिड़की है जहाँ से ईश्वर का प्रकाश चमक रहा है और यही संदेश दे रहा है, अब भी देर नहीं हुई, कुछ समय बाकी है। हमने इसे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का नाम दिया है क्योंकि संग्रहालय केवल अतीत की कला और संस्कृति प्रदर्शित करते हैं, परंतु यहाँ भविष्य की यात्रा है या आपकी अपनी यात्रा है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान को ध्वनि और प्रकाश, काव्य और कला के माध्यम से दर्शाया गया है। हर कलाकृति प्रेम से निर्मित की गई है।
प्राथमिक परिचय प्राप्त कर आप एक शांत सुंदर जापानी बगीचे को देखते हैं। गैलरी के प्रथम भाग में प्रवेश करते ही बाईं ओर की दीवार पर दो चित्र हैं। प्रथम चित्र स्वर्णिम काल का है जहां संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति का साम्राज्य, नर नारी, पशु पक्षी एवं प्रकृति भी अपनी संपूर्ण एवं समृद्धशाली स्थिति में है। अगले चित्र में इसका ही परिवर्तित आधुनिक रूप दिखाया गया है। जंगल का शहरीकरण, वातावरण में प्रदूषण, भौतिकवाद का विकास, दुख अशांति से क्लांत चिंतित मानव। दाई ओर के चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में ग्लोब है। ये उल्टा ग्लोब इस बात का सूचक है कि आज की सृष्टि अपने विकृत रूप में है। मानवीय मूल्यों से रहित मनुष्य स्वयं को दिशा भ्रमित पाता है। दूसरे चित्र में वही व्यक्ति है परंतु पृथ्वी का गोला अब सीधा है। परमात्मा के प्रकाश द्वारा व्यक्ति में ज्ञान के बोध की झलक मिल रही है। अब हम एक छायाचित्र देखते हैं जिसमें एक श्वेत वस्त्रधारी बहन प्राचीन सत्यों एवं वास्तविक रहस्यों के विषय में बताती है।
ये मानव जाति के अंधकार का समय है, किंतु हमारा विश्व सदा ऐसा तो नहीं था। प्रत्येक मनुष्य आत्मा में स्वर की स्मृति पूर्व अंकित है। स्वयं सुख का समय जब विश्व अपनी बाल अवस्था में था, एक अद्भुत सामंजस्य था जो हम आज भी याद करते हैं। क्या मनुष्य पुनः स्वर्णिम सुख को प्राप्त कर सकता है? क्या विश्व पुनः परिवर्तित हो सकता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राचीन ज्ञान योग में विद्यमान है। इसमें चमत्कार है, सत्यता है, पुनः स्वर्णिम सुख लाने की अद्भुत क्षमता है।
यह स्वर्ग का पहला चित्र है जिसमें सुंदर विमान, अद्भुत सौंदर्य वाले पक्षी, कल कल करती सरिता और व्योम पर मुस्कुराता मनोहारी इंद्रधनुष चित्रित है। स्वर्ग में प्रवेश कराने वाला यह कलात्मक द्वार है जिस पर एक अन्य संकल्पना प्रतिबिंबित होती है। चित्र में रंग बिरंगे पक्षी, तितलियां एवं सुंदर वाटिका दिखाई दे रही है। सामने के चित्र में सुंदर पुष्पों के बीच में राजकुमारियां नन्हे सुकोमल प्राणियों से जैसे खेल रहे हो। समीप के चित्र भी सृष्टि के प्रारंभ का संपन्न प्राकृतिक रूप, जैसे कि प्रतीक्षा कर रहा हो अपने मालिकों की। सबसे ऊपर परमात्मा शिव हैं, जो पवित्रता एवं शक्ति के पुंज हैं। छोटे छोटे सितारों के रूप में आत्माएं एक नवीन दुनिया की शुरुआत करने हेतु पृथ्वी की ओर आ रही हैं। थोड़ा आगे चलने पर स्वर्ग के प्रकाश में रंगीन आनंद भरे दृश्य देखने को मिलते हैं। दाई तरफ अद्भुत फूलों और फलों से लदे वृक्षों की चित्रकारी है और बाई तरफ है सतयुग जीवन की चित्रकारी। यहाँ पर मानवता के परम सौंदर्य व चरम उत्कर्ष को चित्रित किया गया है। वृक्षावक कुलांश से भर रहे हैं। अध्ययन और अध्यापन का कार्य कला के माध्यम से हो रहा है। बच्चों का समूह आनंद मग्न नृत्य कर रहा है। हर्षोल्लास से संपन्न एक समूह बसों की ओर आता दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रासाद द्वार पर विचित्र हाथी स्वागत की मुद्रा में है। हम देख रहे हैं पारदर्शी महीन पंखुड़ी नुमा दीवारों के मध्य एक सभा। पास में कुछ उड़न खटोले दिखाई दे रहे हैं, जो कि मनोबल से स्वचालित हैं, जिनके ध्वनि में संगीत की स्वर लहरियां हैं। चित्रों के आगे निर्मित कुछ तख्तियों पर महान दार्शनिकों के एवं धर्म शास्त्रों की सुवाक्य अंकित हैं। भिन्न भिन्न शब्दों में स्वर्णिम युग के विषय में लिखे इन विचारों में समान स्मृतियां एवं भावनाएं झलकती हैं। झरझर झरते झरनों का उद्गम सुनहरी चट्टानों से हो रहा है। झरनों के साथ चलते हम स्वर्णिम काल से बाहर आते हैं। हालांकि झरना अभी भी दिखाई देता है, परंतु परिवर्तित रूप में। हम प्रवेश करते हैं द्वापर युग में। प्रथम चित्र में संपूर्ण मानव सभ्यता समय के सीढ़ी से उतरती दिखती है। निशय रूपी जल प्रवाह उन्हें सत्यता और पवित्रता से दूर ले जाता है। यहाँ पश्चिमी मान्यता के अनुसार एडम और ईव सर्प रूपी शैतान से वर्जित फल खाकर पतनोन्मुख होते हैं। वे लज्जा और भय से ग्रसित स्वयं को परमात्मा की नजरों से छिपाना चाहते हैं। दाई और पुनः एक श्वेत वस्त्रधारिणी प्रकट होकर कहती है,
संसार में स्वर्ग की समाप्ति के साथ ही दुख आरंभ हुआ। इससे भ्रम उत्पन्न हुआ और आत्मिक शक्तियां क्षीण होने लगी। विश्व की स्थिति जो आत्मिक स्मृति युक्त मानवता से थी, वो परिवर्तित होने लगी। आत्मिक विस्मृति के कारण लोगों ने संतुष्टता और जीवन के उद्देश्यों को स्वयं से बाहर खोजना प्रारंभ कर दिया। धर्म प्रणेता अवतरित होने लगे। पूजा अर्चना में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मूसा, मोहम्मद, शंकराचार्य प्रत्येक प्रणेता ने आध्यात्मिक सत्यों का रहस्य उद्घाटन किया। धर्म के माध्यम से सुख एवं मुक्ति की कामना भी करने लगे।
बीते स्वर्ग की धुंधली स्मृतियों को लेकर मनुष्य अपनी विलुप्त खुशियों को पुनः प्राप्त करने की खोज आरंभ करता है। और फिर सर्वप्रथम निर्माण हुआ परमात्मा का स्मृति चिन्ह सोमनाथ का मंदिर। यहाँ लगे पैनल्स पर धर्मों की मुख्य शिक्षाएं अंकित हैं और हर पैनल के पीछे पूजा के भिन्न भिन्न रूपों और स्थानों की जानकारी दी गई है। दिखाया गया है कि हजरत मूसा ईश्वर के विधि विधान का उपदेश दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा के आगे पूजा के लिए उनके शिष्यगण का एक समूह एकत्रित है, एक विशाल गिरिजाघर दिखाई देता है जहां ईसाई एकत्रित होते हैं और फिर मस्जिद जहां कुरान पढ़ते हैं और इन सब से ऊपर हैं परमपिता शिव जो अपने सभी बच्चों पर भले ही वे अलग अलग धर्मों के हैं अपने स्नेह और पवित्रता से युक्त प्रकाश की किरणें फैला रहे हैं। सामने ही श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक उल्लिखित है कि जब मानवता का स्तर निम्न कोटि का हो जाता है तब वे स्वयं अवतरित हो सत धर्म की स्थापना करते हैं। अब हम द्वापर युग से बाहर आते हैं। दाई ओर एक प्रतिमा है। ईसाई, यहूदी एवं मुस्लिम परंपरा के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ देवदूत माइकल और शैतान लूसीफर की प्रतिमा। शैतान लूसीफर के कान बंद हैं, जो सत्यता को सुन नहीं सकता। लंबे नाखून, लोभ और कसी मुट्ठी लाल आंख क्रोध का प्रतीक है। वह विकारी वासना से ग्रसित होने के कारण श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता, अतः पत्थर सदृश बन जाता है। पवित्रता के बल से देवदूत माइकल ने शैतान लूसीफर अर्थात कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। उसके एक हाथ में योग की मशाल तथा दूसरे में संपूर्ण संतुलन का प्रतीक तिला दिया है। कलयुग में प्रवेश करते ही हम प्रकाश से दूर हो गए। बाईं ओर पांडव और कौरवों अर्थात सद्गुणों के दुर्गुणों के विरुद्ध संघर्ष की गाथा चित्रित है। तनिक आगे चलकर हम देखते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया अर्थात कारण और परिणाम को स्पष्ट करने वाला एक क्रियाशील मॉडल जो हमें कर्म और फल का ज्ञान देता है। सामने प्रकाशमान चित्रों के बॉक्स हैं जिनमें सारा विश्व अकेलेपन, दुख, पतन, अंधकार आदि से पीड़ित दिखाया गया है। बाई तरफ लगे चित्र में विश्व के इतिहास को सीढ़ी के रूप में बताया गया है। स्वर्गवासी देवताएं सीढ़ी उतरने के साथ साथ पवित्रता और संपूर्णता से क्षीण होते जाते हैं, पश्चात यथार्थ खुशी को पुनः प्राप्त करने के लिए भक्ति पूजा पाठ का विविध रूप अपनाते हैं। अंतिम छोर पर घोर कलयुग का रूप है। में एक नाव पर श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मावत्स विषय वैतरणी से नर नारियों को डूबने से बचाने का प्रयत्न करते हैं। सत्य के इस नाव के नाविक ब्रह्मा बाबा हैं। इन सब पर परमात्मा का प्रकाश बरस रहा है।
बदलते युग क्रम में आज के सर्वथा विपरीत एक ऐसा युग भी था जब मानव इतिहास का स्वर्णिम काल था। मानवीय सभ्यता स्वयं में इतनी उत्कृष्ट और विकसित थी कि उसे स्वर्ग की संज्ञा दी जा सकती है। यह कालचक्र का प्रथम युग था जब प्रकृति ही संपूर्ण सत्वप्रधान थी। दैहिक दैविक एवं भौतिक सुख समृद्धि से संपन्न थी हमारी धरती। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है जब मानव प्रकृति एवं पशु पक्षियों में भी परस्पर प्रेम स्वतंत्रता सद्भावना एवं समरसता थी। सुखमय सृष्टि की कुछ पीढ़ियां और कुछ पौढ़ियां पार कर हम त्रेता युग में प्रवेश की। रजत काल का ये युग भी सुंदर एवं अमूल्य था। शनि शनि परिवर्तन का ये दौर भी परिवर्तित हुआ। अब मानव मन अपनी कामनाओं लालसाओं का क्षेत्र बढ़ाने लगा। लोग योग्य एकाधिकार की भावना जन्मने लगी। परिणामतः प्रकृति में भी बदलाव आया। कहीं कहीं बाढ़ भूकंप जैसी आपदाएं भी आई जिस कारण अनेक समस्याओं का आविर्भाव हुआ। हम अपनी प्राचीन एवं श्रेष्ठतम सभ्यता एवं संस्कृति से विस्मित होने लगे। तब शुरू हुए आपसी मतभेद। भौतिकता ने अब देह निर्माण का रूप धारण किया। कलह क्लेश के तप्त वायुमंडल में शीतलता लाने हेतु धर्म पिताओं का आगमन हुआ जिससे लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास तथा भक्तिभाव बढ़ा। पैगंबरों ने मानव को सत्य अहिंसा प्रेम एवं भाईचारे से रहने की सीख दी। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न संस्कृतियां आरंभ हुई। महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। इनमें से कुछ एक सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में लिखी गई और कुछ तो विलीन ही हो गई। बीते दिनों की सुखद स्मृतियां बड़े बुजुर्गों के द्वारा कथा कहानियां यूं परिलोक की गाथाएं बन गई। हमने उन्हें आदिमानव आदिवासी की संज्ञा दी। कालांतर में व्यक्ति अनेक शक्तियों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होने पर ईश्वर के साथ साथ देवताओं एवं धर्मगुरुओं को भी अपना इष्ट मानने लगा। इसी बीच विज्ञान ने आश्चर्यजनक रहस्य खोले। अनेकों उपकरणों का निर्माण हुआ। कल पुरुषों का यह युग कलयुग कहलाया। साधन एवं सुख सुविधाओं में लिप्त होने के कारण स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर में भी गिरावट आई। विषय भोग इच्छाओं व जनसंख्या में अति वृद्धि हुई। विज्ञान ने जहां साधनों से संपन्न बनाया वहां यह मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे भयावह एवं असमंजस की स्थिति में हर वर्ग का प्राणी चिंतित है। वो स्वयं से प्रश्न करता है क्या यही जीवन है? आखिर सत्य क्या है? मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? कहां मिलेगी प्रसन्नता? अंधकार में खड़ा मानो प्रकाश की तलाश में है। इन प्रश्नों के आगे अनेकों अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देने वाला विज्ञान भी मूक हो जाता है। परंतु ये समय भी अधिक नहीं रहेगा। ये विश्वव्याप्त शीत युग अनंत रात्रि तो नहीं है। ये विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युग है। इस घनघोर रात्रि के अंधकार में भी ज्योति जगाई जा रही है। ये पतन की चरम सीमा और उत्थान के शिखर का संयोग है। प्राचीनतम यह ज्ञान रहस्य नहीं है, ना ही चंद व्यक्तियों तक सीमित है, परंतु ये मानवता का जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए और खोजिए इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए?
कलयुग को पीछे छोड़, अब आप एक ऐसे कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से वर्तमान समय का दर्शन एवं आत्मस्वरूप की अनुभूति कराई जाती है।
मानव जीवन के सभी युगों में से यह वो युग है जहां सबसे गहन अंधकार है, यह कलयुग है। वर्तमान समय यही युग चल रहा है। हमने अनेक आविष्कार किए हैं और परमाणु के विभाजन एवं चांद तक पहुंचने से भी आगे बढ़ गए हैं। हम विज्ञान के द्वारा जीवन स्तर को उच्च बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि भूतकाल में तो हमारा हर बात पर नियंत्रण था और आज कुछ भी नहीं है। प्रगति के नाम पर हमने धरती का काफी हिस्सा वृक्षहीन कर दिया है। वृक्ष जो वायु को शुद्ध रखते हैं, छाया तथा आराम देते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन जो खेतों की मिट्टी को ढहने से बचाता है, वह जितने समय में उत्पन्न होता है उससे भी शीघ्र उसका विनाश कर दिया जाता है। हम नए नए रेगिस्तान बना रहे हैं जहाँ कोई नहीं रह सकेगा। पशुओं और पक्षियों की कई जातियाँ आज धरती से लुप्त हो गई है। कुछ जानवरों को तो आज के बच्चे देख भी नहीं पाएंगे। हमने नालों को गंदगी से रोक लिया है और नदियों को अनेक प्रकार के विषयों से जहरीला बना दिया है। पानी की सतह काई से भरती जा रही है जिससे जल में जीवन असंभव होता जा रहा है। हम इस धरती की सुंदरता के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। जहाजों से रिसने वाले तेल से सागरों में रहने वाले जीव मर रहे हैं। सूर्य की गर्मी अब हानिकारक होने लगी है क्योंकि हमने ओजोन की परत जो हमें सूर्य की नुकसानकारक किरणों के प्रभाव से बचाती है के कुछ भाग को नष्ट कर दिया है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार तक में भी नहीं। दरवाजों पर ताले हैं और खिड़कियां बंद हैं। नए नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं एवं लाखों लोग उसकी चपेट में आकर मर रहे हैं। दुनिया का एक भाग बाहरी सुंदरता एवं चमक दमक और आए दिन नए नए आविष्कारों से भरता जा रहा है, जबकि दूसरा भाग गरीबी, भुखमरी एवं अभावों भरा जीवन जी रहा है। धरती का ग्रह नष्ट हो रहा है। लोग अनेक साथियों के होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वह एक दूसरे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। धर्म का सुख भी फीका पड़ता जा रहा है क्योंकि धर्म भी अब शक्तिहीन हो गए हैं। वे आध्यात्मिकता का सार भुला चुके हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। वे आत्मा के विषय में अब अधिक नहीं बोलते। अब तो उनका जीवन शरीरों का हाव भाव व्यक्त करने में ही लगा हुआ है। पुरुष तन में आत्माएं स्त्री तन वाली आत्माओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। ऐसे ऐसे हथियार खोज लिए गए हैं जो एक ही समय में अनेक शरीरों को एक साथ नष्ट कर सकते हैं। यह संसार जो फूलों का बगीचा था अब बदल कर कांटों का जंगल बन गया है। यह सृष्टि अपना एक चक्र समाप्त कर स्वर्ग से नर्क तक पहुंच चुकी है। दुनिया से प्रकाश लुप्त होता जा रहा है। वर्तमान समय शीतकाल का युग चल रहा है। अनेक महान आत्माओं और अच्छे विचारकों ने आकर इस सृष्टि को रसातल में जाने से बचाने की दिल से व पूरी शक्ति से कोशिश की है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज सतो रजो व तमो से होकर गुजरती है, क्षण क्षण शक्ति नष्ट होती जाती है। जब तक संपूर्ण शक्ति नष्ट नहीं हो जाती, पतन होने से रोका नहीं जा सकता। अब केवल आध्यात्मिक शक्ति ही प्रकृति को वापस उसी सतो स्थिति तक ला सकती है। आध्यात्मिक शक्ति बेअंत और अति शुद्ध शक्ति है, जो केवल एक परम पिता परमात्मा से ही प्राप्त होती है। परमात्मा शक्ति अति श्रेष्ठ और अनंत है। अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान कल्प वृक्ष के पत्तों और टहनियों से हटाकर इस वृक्ष के बीज की ओर लगाएं। परम पिता परमात्मा ही इस कल्प वृक्ष का बीज है। अब तन और मन को स्थिर कीजिए, अपनी आंतरिक शक्ति को भ्रकुटि के मध्य केंद्रित कीजिए। आप आत्मा यही निवास करती है, आप ज्योति स्वरूप आत्मा है, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, जिसकी माप नहीं की जा सकती। आप में शक्ति सुषुप्त रूप में विद्यमान है, अब इसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। शरीर आपका जरूर है, पर आप शरीर नहीं है। आप शरीर में विद्यमान एक आत्मा है। इस सत्यता को पहचान कर मन में इसके विचार ले आए। आप अदृश्य और अविभाज्य अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति है। आपके अंदर विचारने के लिए मन है, निर्णय करने के लिए बुद्धि है, और जो भी आप शरीर से कर्म करते हो उसके संस्कार आप में ही भरते हैं। आप शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हो, आंखों द्वारा देखते हो, कानों द्वारा सुनते हो, हाथों द्वारा कार्य करते हो, पैरों द्वारा चलते हो, लेकिन आंख कान हाथ ये आप नहीं हो। आप तो प्रकाश स्वरूप हो। आपका भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आप आत्मा अमर हो। परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़कर आपकी आध्यात्मिक शक्ति पुनः जाग जाएगी। परमात्मा ही सर्व शक्तियों के अनादि स्रोत है। वह भी ज्योति बिंदु स्वरूप एक आत्मा ही है, लेकिन वह परम आत्मा है। वह हम आत्माओं के सदृश जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती है, और न ही उनका अपना कोई शरीर है। वह प्रकृति की सतो रजो एवं तमो स्थितियों से भी परे है। वह अति पवित्र है। सर्वशक्ति शक्तिमान है वह संपूर्ण है, वह भी हम आत्माओं की तरह उसी अनंत शांति धाम के वासी है। उनका नाम कल्याणकारी शिव है। अब अपने सत्य स्वरूप को पहचानिए, परमात्मा के भी सत्य स्वरूप को पहचानिए, मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़िए। परमात्मा आपके परम पिता हैं। आपके बंधु तथा सखा भी है। इस संबंध से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, यही योग है।
योग की अनुभूति कर बाहर आते हैं तो एक पहाड़ी पर अलग अलग धर्मों एवं वर्गों के लोग योग साधना कर रहे हैं। परमपिता शिव परमात्मा जो सर्व आत्माओं के माता पिता हैं, उनसे अपनी बुद्धि का संबंध जोड़कर सर्व गुणों व शक्तियों की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके आगे एक फरिश्ते की प्रतिमा है। यह फरिश्ता मनुष्य की उच्चतम स्थिति संपूर्णता का प्रतीक है। फरिश्ते के बाद अष्ट शक्तियों को स्पष्ट करता चित्र है। स्व अनुशासन करने एवं सफलतामूर्त बनने हेतु इन अष्ट शक्तियों की आवश्यकता है जो राजयोग द्वारा प्राप्त होती है। परखने की शक्ति से हम हर परिस्थिति को अच्छी रीति समझ सकते हैं। निर्णय करने की शक्ति अर्थात हम उपयुक्त का चुनाव कर सकते हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। समेटने की शक्ति हमें निर्बंधन बना देती है। सहनशीलता से सर्व के सम्माननीय बनते हैं। समाने से हम एक दो की समीपता का अनुभव करते हैं। सहयोग की शक्ति से हम असंभव कार्य भी सहज संभव कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति हमें साहस और स्वमान प्रदान करती है। विष्णु की यह मूर्ति नर नारी दोनों के श्रेष्ठ गुणों से युक्त संपूर्ण मानव का प्रतीक है। चारों भुजाओं में अलंकार है। कमल पुष्प प्रतीक है पवित्रता का। स्वदर्शन चक्र स्वयं एवं सृष्टि के चक्र के ज्ञान का। गदा नकारात्मक वृत्तियों एवं दुर्गुणों पर विजय पाने का। और शंख है प्रतीक ईश्वरीय ज्ञान को चारों दिशाओं में प्रसारित करने का। यहाँ पर रोजमर्रा के क्रियाकलाप करते हुए कुछ व्यक्तियों के चित्र हैं, जिन्हें कर्म करते भी स्वयं का भान एवं प्रभु स्मृति है। गीता में वर्णित कर्मयोग इसे ही कहा गया है। प्रस्तुत चित्र में कर्मेंद्रिय रूपी पांच घोड़ों पर नियंत्रण प्राप्त करने वाले रथवान आत्मा को दिखाया गया है। अब आप पहुंचते हैं एक स्क्रीन के आगे जिसमें पुनर्जन्म पर प्रकाश डाला गया है। कालचक्र में अनादि रूप से चक्र लगाते हुए आत्मा ने विभिन्न शरीर धारण किए। बाल युवा वृद्धावस्था के पश्चात देह का त्याग कर आत्मा पुनर्जन्म लेती है।
कर्मों के अनुसार आत्मा को स्त्री व पुरुष तन प्राप्त होते हैं। वह किसी भी जाति, देश या संस्कृति में जन्म ले सकती हैं। हम फिर से एक श्वेत वस्त्रधारिणी के सम्मुख हैं।
काल चक्र के सभी युगों में ये युग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युग में ही परमात्मा का स्वयं अवतरण होता है। वे हमें स्वयं के सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। वे मनुष्य आत्मा को पुनः पावन बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। हमें उन्हें पहचानकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। उनकी पहली एवं प्रिय श्रीमत है, आप आत्मा है, अनादि अविनाशी ज्योति का पुंज है, जो कि इस शरीर में निवास करती है। उनकी दूसरी श्रीमत है, परमात्मा जो है जैसा है उस रूप में पहचान कर उन्हें याद करें, क्योंकि वही सदा संपूर्ण पावन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आज भी हमें स्नेह प्रदान कर रहे हैं।
सृष्टि चक्र के इस चित्र में बताया है कि प्रारंभ में सृष्टि स्वर्ग थी, अपवित्रता के कारण नर्क बन चुकी है। अब पुनः परमात्मा इस संगम युग पर अवतरित होकर आत्माओं को सत्य ज्ञान दे उन्हें पवित्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा व बल प्रदान करते हैं। इसके बाद हम सृष्टि के इतिहास को कल्पवृक्ष के रूप में देखते हैं। इस वृक्ष का तना है स्वर्ण एवं रजत युग। वृक्ष के मध्य में ताम्र युग की शुरुआत होती है, जहां से अनेक धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। शाखाओं उपशाखाओं के विकास से सृष्टि वृक्ष कमजोर हो जाता है, फलतः परमात्मा अवतरित होकर पुराने वृक्ष के विनाश से पूर्व ही नए वृक्ष की कलम लगाते हैं, और इस प्रकार यह अनादि क्रम चलता रहता है। अगला चित्र संस्कार परिवर्तन का है, जिसमें यह बताया गया है कि यह समय है स्व परिवर्तन का। अभी नहीं तो कभी नहीं। दाई तरफ के चित्र में दिखाया गया है हमारा पृथ्वी ग्रह प्राकृतिक प्रकोपों एवं आण्विक अस्त्रों शस्त्रों से घिरा है। अब यही समय है संसार के शुद्धिकरण का। कला दीर्घा के अंतिम भाग में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन कहानी तथा संस्था के उद्भव एवं विकास के चित्र हैं। लिखित पैनल्स पर विद्यालय द्वारा आयोजित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जीवन मूल्य तथा विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड आदि के अंतर्गत बच्चों द्वारा बनाई गई कुछ कलाकृतियां दीवार पर सुसज्जित हैं। इस तरफ संस्थान की वर्तमान प्रमुख दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी के चित्र एवं उनके संक्षिप्त जीवन परिचय दिए गए हैं। इन तस्वीरों के नीचे कुछ कंप्यूटर्स हैं, जिनके द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले कदम पर चित्र में एक सामान्य स्त्री पुरुष ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से देव पद प्राप्त करते दिखाए गए हैं। इसी चित्र के निम्न भाग में एक इल्ली का परिवर्तन हो तितली के रूप में चित्रित किया गया है। कमल पुष्प का यह चित्र हमें अंधकार से दूर पवित्रता के प्रकाश में रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। अंत के इस प्रकाशमान चित्र के अनुसार हम आत्माओं ने इस साकार मनुष्य लोक में चारों युगों का चक्र लगाया। अब हम जाएंगे अपने लाल सुनहरे प्रकाश वाले घर परमधाम की ओर। इस प्रकार हमने इस कला दीर्घा के माध्यम से कई आध्यात्मिक रहस्यों को जाना एवं अनुभव किया। ओम शांति।